ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। श्री वृंदावन धाम की, रमण रति धाम की, श्री कृष्ण बलराम की। तो हमारा जो शास्त्र है, जो शास्त्र हम पढ़ते हैं, उसे हम पढ़ रहे हैं, अनंत साल से ऋषि मुनि संतगण सब पढ़ते आ रहे हैं, है ना। वो शास्त्र भी क्या है? प्रवचन नहीं है क्या? है आपके विचार से वो शास्त्र? प्रश्न और उत्तर। पूरा वैदिक शास्त्र जो है, आप ऋग्वेद को उठाइए, या तो भगवद गीता को उठाइए, या तो भागवतम को उठाइए, या तो उपनिषद को लीजिए, या कोई पुराण को लीजिए, या कोई और सप्लीमेंट जो होते हैं, बाकी आरण्यक और बहुत सारे शास्त्र के हिस्से हैं, कोई भी आप कोई भी ग्रंथ लीजिए जो आध्यात्मिक बोनाफाइड योग्य ग्रंथ है, उसमें कोई न कोई व्यक्ति प्रश्न कर रहा है और कोई व्यक्ति उसका उत्तर दे रहा है। भगवद गीता में अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं और कृष्ण भगवान उत्तर दे रहे हैं। श्रीमद भागवतम में भी 18,000 श्लोक है, 12 स्कंद है, उसमें कई प्रकार के लोग प्रश्न कर रहे हैं, कई प्रकार के उत्तर दे रहे हैं। जैसे कि परीक्षित महाराज प्रश्न कर रहे हैं और सुखदेव जी उत्तर दे रहे हैं, और सब संतगण प्रश्न कर रहे हैं और सूत गोस्वामी उसका उत्तर दे रहे हैं। फिर कहीं मैत्रेय जी उत्तर दे रहे हैं और विदुर जी प्रश्न कर रहे हैं, और गर्ग संहिता में नारद मुनि उत्तर दे रहे हैं, बहुलाश्व राजा प्रश्न कर रहे हैं, ब्रह्मवर्त पुराण में नारायण ऋषि बोल रहे हैं और नारद मुनि प्रश्न कर रहे हैं। तो पूरा शास्त्र जो है वो प्रश्न उत्तर के रूप में, इसका मतलब क्या होता है कि जो परम सत्य है, जो हमें जिसका साक्षात्कार करना जरूरी है, जिनको समझना जरूरी है, जिनकी सेवा में हमको लगना है, वो परम सत्य जो है वो ऐसे ही प्रश्न उत्तर के माध्यम से प्रकट हो रहे हैं। अल्टीमेटली शास्त्र से प्रकट तो भगवान को होना ना, वेद वेदैश्च सर्वै अहमेव वेति वेदांतकृत वेद विदेव चाहम, जानना उनको ही है वेद के माध्यम से। शास्त्र ज्ञान, इसको वेद कहते हैं, वेद तो वेद यानी ज्ञान से जानना भगवान को ही, साक्षात्कार अनुभूति उनकी करनी है। लेकिन वो कहीं भी प्रबंध या प्रवचन, प्रवचन भी एक प्रकार का संवाद ही है, जब श्रोतागण प्रश्न करेंगे तो प्रवचन बहुत अर्थपूर्ण हो जाता है, नहीं तो प्रवचन जो है वो श्रोताओं के सिर के ऊपर से यात्रा करके दीवार से टकराता है और वहां से गिर जाता है, तो पता नहीं उसका आगे क्या होता है। तो इसलिए अगर और प्रश्न उनके होते हैं, अभी ये भी बताता हूं मैं, दो प्रकार के लोगों को प्रश्न नहीं होते, आप देख लीजिए आप उसमें उनमें से है क्या। अगर आप उनमें नहीं है तो फिर आपको प्रश्न पूछना होगा। एक प्रकार के लोग वो हैं कि वो उनको सब कुछ ज्ञात हो गया है, जो भी जीवन के आध्यात्मिक उन्नति के लिए पता करना है वो सब उनको पता हो गया है, और दूसरे लोग वो होते हैं जो जिनको कुछ भी पता नहीं है, वो प्रश्न नहीं करते। जिनको सब कुछ समझ में आया है वो प्रश्न नहीं करते हैं, जिनको कुछ भी समझ में नहीं आया है वो भी प्रश्न नहीं करते, उनको वो पता नहीं क्या पूछना है, उनको समझ में नहीं आ रहा। तो मुझे लगता है कि या तो आप को सब कुछ समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया होगा तो आप ऐसे भी नहीं होगा आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। तो मतलब हम सब लोग नम्रता पूर्वक हमको ये स्वीकार करना चाहिए कि हमें प्रश्न होना चाहिए, और प्रश्न होना ये मुमुक्षु प्रवृत्ति का लक्षण है। मुमुक्षु प्रवृत्ति मतलब जिसको आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करनी है उसी को प्रश्न आता है मन में। अगर ज्ञान के बारे में प्रश्न नहीं आता होगा तो मैं इस समय कैसे उत्कृष्ट तरीके से, उत्तम तरीके से भगवान की सेवा करूं, कैसे करूं, ये प्रश्न तो हर एक व्यक्ति को होना चाहिए। हाउ कैन आई सर्व माई बेस्ट इन द गिवन सिचुएशंस। आज के दिए हुए स्थिति में भगवान के द्वारा जो मुझे स्थिति मिल रही है उसमें मैं कैसे उत्तम तरीके से, अति उत्तम तरीके से भगवान की सेवा कर सकता हूं, ये प्रश्न तो सबको होना चाहिए। तो प्रश्न होना ये एक सिंसियर प्रामाणिक भक्त का लक्षण है, जो प्रश्न करता है कि कैसे मैं समझूं उस बात को, कैसे करूं। इसलिए मैंने कहा कि हम आज प्रश्न उत्तर करेंगे। हरे कृष्णा। तो आप आरंभ कर दीजिए प्रश्न करने। हरे कृष्णा। गुड बाय माता जी। हरे कृष्णा। प्रणाम। हरे बोल। हरे कृष्णा। यस सर, आपको कोई प्रश्न है?
भक्ति में सीरियस कैसे होना?
भक्ति में गंभीर कैसे होना है? सब लोगों को लगता है क्या भक्ति में गंभीर होना चाहिए? सब लोग कन्विंस है इस बात में भक्ति में गंभीर? हाँ,
इसका मतलब इसकी पृष्ठभूमि ऐसे कि हम लोग जब भक्तों के संग में रहते हैं या लेक्चर सुनते हैं तो हम बहुत मतलब हमारी इच्छा जागृत होती है भक्ति करने की।
हाँ।
या मन में एंथुसियाज्म
उत्साह होता है,
उत्साह बढ़ जाता है और कोशिश भी करते हैं, लेकिन जो हमारा नॉर्मल प्रपंच का जो जीवन है मतलब रेगुलर एवरीडे एक्टिविटीज दे आर सो सैपिंग इन मेनी वेज बट दे सैप द एंथुसियाज्म परफॉर्म डिवोशनल सर्विस। सो इवन आवर वर्क, सो समटाइम्स वी आर टोल्ड दैट आवर वर्क कैन बी मेड इन टू डिवोशनल सर्विस बट मेनी टाइम्स वेन वी आर डूइंग दैट वर्क अवर कॉन्शियसनेस लैक्स दैट एंड देन वेन दैट वर्क बिकम्स सिंपली वर्क देन अगेन वी लूज अवर फोकस ऑफ डिवोशनल सर्विस।
युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टसु कर्मसा। भगवान ने भी उसका उत्तर दिया है कि हमारा काम जो है वो अगर हमें, उनका प्रश्न आपको समझ में आएगा, मैं दोबारा आपको समझ देता हूं। तो वो कह रहे हैं कि हमारा काम, हम उनका प्रश्न ये था कि मुझे हमें भक्ति में गंभीर कैसे होना, इज दैट राइट? और हमारे जो रोज का जीवन है, हमारा प्रपंच है, हमारा रोज का काम है, वो भी भक्ति के रूप में हो सकता है, लेकिन कभी कभी वो काम ही हमको निरुत्साहित कर देता है, थका देता है, एग्जॉस्ट हो जाते हैं हम। तो कैसे हम अपने काम को और अपने जीवन को भक्तिमय बनाएं और गंभीरता से उसको ले लें? आपको ये प्रश्न मन में लगता है उपयोग के प्रश्न है? सबको है थोड़ा थोड़ा ये प्रश्न मन में, मेरे मन में भी ये प्रश्न है कैसे करना है। लेकिन थोड़ा बहुत अच्छा मुझे समझ में आया उसका मैं भी कोशिश करूंगा बताना। सबसे पहले जो है वो है साधना। क्योंकि साधना अगर है जीवन में हमारे, साधना का मतलब होता है कि कोई एक साध्य है, साध्य यानी जो हमको अचीव करना है, प्राप्त करना है, साध्य करना है, जिसको प्राप्त करना है, वो प्राप्त करने के लिए किए गए जो प्रयत्न है, जो नियमावली है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसको साधना कहते हैं। और वो साधना जो है वो हमको हमारे गुरु देते हैं, वही बताते हैं कि साध्य क्या है। जैसे कि कोई बिजनेसमैन बच्चा है, व्यक्ति है, तो अपने बच्चे को बताएगा कि पैसे कमाना तेरा बोल का लाइफ का उद्देश्य है, वो फिर ये कैसे कमाना है, ऐसे मैंने अपने दुकान में आ जा, मैं समझा दूंगा आपको कैसे। तो उसने अपना जो गोल है बच्चे को बता दिया। लेकिन जो गुरु महाराज होते हैं वो किसी के भी हो, मेरे हो, आपके हो, विश्व भर के जितने गुरु हैं, उनका सबका उद्देश्य एक ही होता है कि भगवान की प्राप्ति, वो साध्य है। और वो अपने अपने तरीके से अपने अपने शिष्यों को वो साधना प्रणाली जो है, नियमावली देते हैं कि आपको ये करना है, इसके द्वारा अंत में आपको भगवान की प्राप्ति हो सकती है। तो सबसे पहले हम ये अभी यहां पर ये एज्यूम कर रहे हैं, मतलब ये क्या कहते हैं उसको हिंदी में, ये हम ये स्वीकार कर रहे हैं कि आप सब लोग भक्त हैं। ऐसे नहीं समझ रहा हूं मैं कि कोई बाहर के भी लोग बैठे हैं, सबको यहां जितने लोग बैठे हैं ये मैं ग्रहित पकड़ता हूं मन में कि आप सब लोग भक्त हैं और भगवान को चाहते हैं, भगवान को प्राप्त भी करना चाहते हैं। कोई पुराने होंगे कोई नए होंगे, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन हर एक व्यक्ति को पहले तो भक्त बनना चाहिए, मुझे आपको और सबको जो मनुष्य जीवन प्राप्त कर चुका है। दूसरी बात है जो भक्त बनना चाहते हैं और बन चुके हैं उन सबको साधना करना बहुत जरूरी है। ये भी बात निश्चित है कि हम में से कोई परमहंस संत नहीं, ना मैं हूं ना आप है ना और कोई यहां पर उपस्थित है। परमहंस संत बहुत विरला होते हैं, जो गुरुदेव और उनके सर पे जो लोग होते हैं वो बहुत विरला होते हैं, वो भगवान भी कहते हैं कि वो बहुत सुदुर्लभ बहुत विशेष व्यक्ति है, लेकिन बाकी सब साधक भक्त हैं जो चाहते हैं कि भगवान की प्राप्ति करें। तो इनके प्रश्न के उत्तर में सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी, सबसे पहले वस्तु है साधना, वो हमारे जीवन का एक स्थायी भाव है। जैसे गायन में होता है ना, गायन में एक ट्यून होती है जो बेसिक होती है, उसके ऊपर अंतरा होता है, उसके ऊपर संचारी होता है, उसके ऊपर आगोप होता है, लेकिन वापस आकर फिर वो संचार जो स्थायी भाव ट्यून होता है ना, वो ऊपर गाते हैं हम लोग उसको, क्योंकि वो हमारा आधार है, वो मूल है, जो स्वर का योजना है वो वहां से आरंभ होता है। तो वैसे हर एक व्यक्ति मनुष्य का स्थायी भाव जो है साधना है, उसको इंग्लिश में कहते हैं लाइफ लाइन। इसे भारत में सॉरी कहने दोस्तों एग्जाम्पल बहुत होंगे, फिर लाइफ लाइन का मतलब है कि उसके बिना नहीं चलेगा, वो होगा नहीं होगा तो हमारा जीवन समाप्त होने के बराबर है। तो साधना जो है वो हर एक व्यक्ति का स्थायी भाव है और उसको उसी तरह हमको समझना चाहिए कि जब तक हमारी साधना सही तरह से हो रही है तब हमारा काम जो है वो भक्तिमय होगा, और हमारा काम जब भक्तिमय होगा तो उस पर भी हमारी साधना निर्भर होगी। अगर हम काम बहुत बढ़िया से कृष्ण भावना में करते हैं तो भी साधना में सहायता करेगा, और साधना अच्छी होगी तो हमारा काम भी अच्छा होते रहेगा। अपने काम को सकाम काम कैसे बनाना है, नहीं बनाना है सॉरी, अपना काम जो है वो हेतु पूर्वक या सहेतु कैसे नहीं करना चाहिए, वो अगर हमको सीखना है कि सब लोग सोचते हम काम करेंगे तो हमको पैसा मिलेगा, काम करेंगे तो हमको यश मिलेगा, फेमस हो जाएंगे, काम करेंगे तो प्रॉपर्टी बढ़ेगी, काम करेगा तो मतलब इसको भौतिकवाद है, ये काम करने का हेतु है कुछ मन में, कुछ ना कुछ हमको पाना है जीवन में, इसमें अधिकतर वो नश्वर चीजें होती है लेकिन हमको प्राप्त करनी होती है। लेकिन साधना जो है उसका गोल कोई भौतिक प्राप्ति नहीं, और भक्तिपूर्ण सेवा जो है उसका भी गोल कोई भौतिक प्राप्ति नहीं है। जब कोई जैसे आप लोग यहां पर हॉस्पिस का काम कर रहे हो, वहां पर आप बसाने में आई कैम्प आई ऑपरेशन कर रहे हो, और कोई पुस्तक वितरण कर रहा है, कोई ड्यूटी वर्शिप कर रहा है, कोई और प्रसाद वितरण कर रहा है, कोई प्रवचन दे रहा है, कोई मंदिर खोल के वहां पर काम कर रहा है, ये सबके भौतिक परिणाम भी होते हैं। यश बढ़ता है, कीर्ति बढ़ती है, धन प्राप्ति भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन इसका गोल वो नहीं है, इन सारे कामों का गोल वो नहीं है, वो बाय द वे आ जाता है। जैसे कोई कथा में हम सुनने को बैठे हैं तो मनोरंजन भी हो जाता है, कभी कभी कोई विनोदी कथा भी आती है तो मनोरंजन का अच्छा लगता है हमको, लेकिन वो कथा का उद्देश्य वो नहीं है, कथा का उद्देश्य भगवत भावना को जागरूक करना है। उसी प्रकार से हमारे काम का जो उद्देश्य है वो भगवत भावना को जागरूक करना है। भगवत में एक श्लोक है, उसको मुझे पूरा याद नहीं है, वो उसका अर्थ यह है कि हरेक काम जो दुनिया में हम करते हैं अंतिमतः हरेक काम के वजह से मन में भगवत प्राप्ति के लिए उत्सुकता और भगवत प्रेम के लिए इच्छा जागृत होनी चाहिए। ऐसा ही काम करने के लिए हमको जीवन दिया भगवान ने। कोई भी काम हो, चाहे भंगी रस्ते साफ कर रहा है, बाई घर में बर्तन मांज रही है और आप कुछ भगवान की विग्रह की सेवा कर रहे हैं, ये सब कामों का उद्देश्य केवल एक ही है कि वो करने के अंत में आपके मन में भगवान के लिए आकर्षण और प्रेम का उत्साह होना चाहिए निर्माण। व्हाट इज द श्लोक फर्स्ट कैंटोन इट इज देयर एग्जैक्टली भी आते हैं सवे पुंसा बहु धर्म ये तो भक्षी अधो ये तो भक्ति अधो सजे अहे तो की अप्रतिहता है आत्मा सुप्रसिद्धि। ऑल वर्क जो भी हम करते हैं कार्य उसका उद्देश्य भगवत प्राप्ति है। हमको लगता होगा हम डॉक्टर हैं, आपको लगता होगा आप ड्राइवर हो, आपको लगता होगा कि हम यहाँ के अकाउंटेंट हैं, लेकिन आपका सारा काम जो आप कर रहे हैं, कोई माँ है, कोई पिताजी है, कोई और कोई घर का रिश्ता है, कोई और ड्यूटी कर रहे करके, अल्टीमेटली ये सारा काम जो है इसका अंतिम लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति, लेकिन हम जानते नहीं उसको, इसलिए हम लोग उसको प्राप्त भी नहीं करते। तो अल्टीमेटली अगर हमारा काम हमको उत्साहपूर्वक करना है और उत्साह होना नहीं है, तो सबसे पहले है साधना। कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो भक्तिपूर्ण सेवा जो हम कर रहे हैं ना, वो भी इतना हो जाता है कि पूरा हमारा दिमाग काम ही नहीं करता उसके बाद। शरीर को रोज कुछ घंटा सोने की जरूरत है, और उस शरीर को कुछ घंटा नींद नहीं मिलेगी तो फिर वो कितना भी मजबूत होगा आदमी तो काम नहीं कर सकते, कितना भी शक्तिशाली आदमी होगा तो भी उसको रोज सोना पड़ेगा, तभी वो आज दिन अपनी शक्तिशाली शरीर के साथ में बहुत बढ़िया काम कर सकता है। उसी प्रकार से आत्मा के लिए रोज साधना का भोजन देना बहुत जरूरी है। हम लोग ये सोच सकते नहीं कि अरे हम तो अभी इतना साल साधना कर चुके हैं, अभी केवल सेवा ही करेंगे बस, अभी तो सब समझ चुके हैं, अभी जितना आत्मा का शुद्धिकरण होना है वो कर दिया अभी हमने, हमने कभी केवल भजन भगवान की सेवा में लगे रहेंगे बस, दिन रात कुछ ना कुछ सेवा करते रहेंगे। लेकिन वो सेवा करने के लिए जो योग्य चेतना है, योग्य भावना जो है ना, वो साधना से उत्पन्न होती है। जब हम बच्चे थे तो हम किसी मित्र के घर में जाते थे तो उसकी माता कहती थी, आप लोग क्या हरे कृष्ण करते रहते हो, दो घंटा आप वेस्ट कर रहे हो उसके अंदर, उस दो घंटे में आप कुछ बढ़िया सेवा कर सकते हो, आप किसी के घर में जाके कीर्तन कर सकते हो, किसी के घर में जाके भोजन बांट सकते हो, किसी के घर में जाके कुछ गाइड कर सकते हो, दो घंटा आप रोज वेस्ट कर रहे हो। लेकिन जो 24 घंटे के अंदर जो 22 घंटे आपको बाकी काम करना है, 6 घंटे सो गए और 2-4 घंटे और काम, 8 घंटा भी हमको जो काम करना है वो काम के प्रति अगर हमारी चेतना सही होनी चाहिए फॉर एग्जाम्पल, तो वो 2 घंटे की साधना कम से कम क्यों ना हो, बहुत आवश्यक है। कई के संप्रदाय में तो 8 घंटे की साधना होती है। प्रभुपाद जी के समय प्रभुपाद जी के गुरु महाराज जो थे उन्होंने सबको दीक्षा दिया और सबको 64 माला का मिनिमम नियम दिया था उन्होंने, और उस जमाने में ऐसी एक भावना थी, धारणा थी कि अगर 64 माला में एक भी माला आप नहीं कर पाएंगे तो आप पतित अवस्था में हैं, ऐसे जनरल भावना उनके संप्रदाय में हुआ करती थी। मतलब 8 घंटे अटेंटिवली ध्यान पूर्वक भगवान नाम का जप करना है, फिर उसके बाद में आप अपना नौकरी धंधा परिवार जो भी है वो सब करेंगे, फिर सोना भी है थोड़ा बहुत, शरीर के लिए भी हाँ कुछ करना है, दवाई लेना है, कभी कुछ कसरत करनी है, कुछ करना है फिट रखने के लिए। मतलब बचे कितने काम, घंटे 4-5 ही घंटे बचते हैं खुद के परिवार के लिए, कुछ धन कमाना हुआ तो। इसका मतलब क्या, सादगी का जीवन 4-5 घंटे में जो होता है बस, हरे कृष्णा, बड़े बड़े महलों की आशा मत करो। ऐसा एक जमाना था, पर जैसे करीब आगे बढ़ता गया तो समय इतना खराब आ गया कि लोग तो प्रभुपाद ने बताया कि 64 माला करनी होगी, थोड़ी इम्पॉसिबल, एक भी माला नहीं कर सकते अगर ऐसा कुछ नियम बनेगा तो 32 हो गया, 32 में पॉसिबल नहीं, तो प्रभुपाद जी ने कहा 16 माला करो बस, उसके ऊपर एक भी कम नहीं होगा माला, तो 16 माला का नियम इस तरह से बना। मतलब हमको डिस्काउंट दिया गया है एक्चुअली, वो करना तो दिन भर है लेकिन वो हम नहीं कर सकते, हमारा कलयुग की बुद्धि जो है ना वो इतनी भ्रष्ट बुद्धि हमारी है कि हम लोग मन ही लगा सकते नहीं भगवान के ऊपर, हमारा मन केवल पैसे के पीछे और इंद्रिय भोग के पीछे और इसके पीछे उसके पीछे भागते रहते हैं हमेशा, एक जगह लगता ही नहीं हमारा। तो 2 घंटा जो है ना आपको अगर बताया जाए कि 2 घंटा साधना करनी है रोज के नियम के रूप में, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है एक्चुअली, इन ट्रू सेंस अगर हम सोचेंगे 2 घंटा कुछ भी नहीं होते, 24 घंटे का 2 घंटा कितना परसेंट हो गया बताओ, व्हाट इज द परसेंटेज, 8% होता है, 8-8.5%, बाकी सारे परसेंट तो आपके पास में है, जो कर चाहे आप कर सकते हो। 2 घंटा एक्चुअली मिनिमम है, अगर 2 घंटा भी आपको आत्मा को खुराक आप नहीं दे रहे हो तो निश्चित रूप से समझो कि आपका आत्मा बहुत कमजोर हो जाएगी और भगवान की प्राप्ति वो कभी भी नहीं कर सकती। आत्मा मतलब आप स्वयं भगवान की दृष्टि से इतने कमजोर हो जाएंगे कि माया आपको हमेशा आपका शोषण करती रहेगी, माया को आप अच्छा मौका दे रहे हैं, शोषण करते रहो हमारा, क्योंकि आत्मा की जो शक्ति नहीं है उसको ना कहने की या उसको रोकने की, तो फिर वो सामने वाली व्यक्ति आपको पूरा शोषण कर लेगी आपका। माया देवी। इसलिए अगर हमको भक्ति में गंभीर होना है तो ये साधना बहुत इम्पोर्टेंट है। और साधना का मतलब ये है कि भगवान नाम के साथ में हमारा संपर्क, ये हमारे साधना का भी लाइफलाइन है। साधना हमारे जीवन का लाइफलाइन है, लेकिन साधना का भी एक अंदर एक स्थायी भाव है, एक एसेंस है, एक सार है, वो है भगवान नाम। और ये हमारा भाग्य है एक्चुअली। बाकी युगों में तो हमको यज्ञ करने पड़ते होंगे, ध्यान करना पड़ता होगा, त्याग करके सब कुछ विरक्त होकर जंगल में जाकर परिवार धन दौलत सब छोड़ के जंगल में बैठना होता, वो सब अभी नहीं है, हम नहीं कर सकते उसको। तो ये कलयुग का और एक हमारे पर कृपा है कि चलो भाई कुछ योग्यता ही नहीं है तो क्या है, थोड़ा तो सिंपल बना दिया आपके लिए, ये करो, वो है भगवान नाम। हाँ, भगवान नाम के विषय में ऐसा है कि भगवान नाम के साथ में रिश्ता बनाना जरूरी है बहुत। भगवान नाम भी नाम प्रभु है, नाम प्रभु यानी वो भी व्यक्ति है, ध्वनि के रूप में आपके लिए प्रस्तुत है, वो स्वयं भगवान ध्वनि के रूप में आपके लिए प्रस्तुत हो गए हैं। तो उस नाम प्रभु नाम के व्यक्ति के साथ में आपका कितना संपर्क है, कितना रिश्ता है आपका, अगर उसके उसको आप समय देते हो नाम प्रभु के साथ में, तो कुछ रिश्ता बनेगा आपका। अगर रिश्ता बनेगा तो ही आगे जाकर प्रेम हो सकता है ना, बिना रिश्ते प्रेम हो सकता है क्या किसी के साथ? आपका हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है तो कैसे प्रेम होगा? या तो आप भगवान या तो संत होना चाहिए, इसको सभी जन सामान्य पर प्रेम रहता है, बिना किसी मतलब के अहेतु अहेतु की सब पर प्रेम होता है उनका, सब जीव मात्र पर प्रेम रहता है, कुत्ता बिल्ली पंछी बंदर सब पर उनका भगवान का अंश के रूप में प्रेम रहता है। वैसे तो हम नहीं, पर हमको अगर प्रेम होना है तो रिश्ता होना बहुत जरूरी है, बिना और रिश्ता होना होगा तो उस रिश्ते में समय देना होगा। अगर हम समय देते नहीं किसी चीज को, जो पति पत्नी को समय देता नहीं है और पत्नी पति के साथ बैठती नहीं है और बालक अपने पिता के साथ नहीं बैठता है और बेटा अपनी माँ के साथ नहीं बैठता है, तो संबंध नहीं होगा तो रिश्ता रिश्ते में प्रेम कैसे आएगा? हर एक रिश्ते को अगर आपको प्रेम में रूपांतर करना है तो उसमें समय देना बहुत जरूरी है। एवरी रिलेशनशिप हैज टू बी गिवन टाइम, अटेंशन एंड टाइम, रादर अटेंटिव टाइम, ध्यानपूर्वक समय बिताना होगा। अगर घर में आप जा रहे हो काम करके 8 घंटा बहुत बिजी, आप पत्नी के साथ में 1 घंटा हो तो पूरी ध्यानपूर्वक पत्नी और परिवार के साथ में आपको बैठना है। ऐसा नहीं कि पत्नी के साथ बैठे मोबाइल में बात कर रहे हैं, पेपर पढ़ रहे हैं और किसी और से देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो फिर वो प्रेम का संबंध नहीं हो सकता उसके अंदर, वो तो मैकेनिकल हो गया, मतलब यंत्र की तरह हो गया सब। तो अगर हकीकत में अगर हमारा कार्य भगवत सेवा के रूप में हमको रूपांतरित करना है, जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जो भी कर्तव्य निभा रहे हैं, उसको अगर भगवत भक्ति की व्याख्या में डालना है, हमको बिठाना है उसको, तो हमारी साधना हमको अच्छी करनी चाहिए और उस साधना में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। नहीं तो जो कार्य हम भगवत सेवा के रूप में कर रहे हैं वो भी हमको खा जाएगा पूरा, उसको कहते हैं ओवर एंडेवर, अति प्रयास, ऐसा उसका रूप गोस्वामी व्याख्या करते हैं। अति प्रयास, अति प्रयास का मतलब क्या है? जो हमारी सेवा है वही इतनी हो गई है कि वो जिस पर आधारित है उसी को हम दुर्लक्ष कर रहे हैं। पिंजरा लाके रखा है, पंछी लाके रखा है और पंछी को बिना खाद्य दिए हुए पिंजरे को ही साफ सफाई करके चकाचक रख रहे हैं, तो पंछी मर जाएगा, पिंजरा रहेगा उधर ही चमकता हुआ, क्या लाभ है उसका? तो इसका उत्तर बहुत विस्तार में दे सकते हैं, संक्षेप में अगर कहा जाए तो हमारा कार्य हमको सबको करना है ना, कोई मुक्त नहीं है, बिना कार्य कोई रह सकता नहीं। कोई पिता का कार्य कर रहा है, कोई माता का कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई अपने कंपनी में काम कर रहा है, कोई और कुछ कर रहा है, खेती कर रहा है, और ये सारे काम अगर हमको इच्छा है कि ये सारे कामों के माध्यम से भगवान की अनुभूति हो और भगवान का प्रेम उत्पन्न हो, उनके साथ में आकर्षण उत्पन्न हो, प्रेम से ये भगवान की अनुभूति हो इस काम के माध्यम से, तो हमें सबको साधना करनी होगी, इससे कोई छुटकारा नहीं है। ये मत समझना संत लोग साधना नहीं करते, संत लोग भी अपने परमहंस सिद्ध अवस्था में भी साधना करते रहते हैं। ये समझना गलत है कि एक बार संत बन गए ना तो साधना वाधना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब तक संत बनने तक ही हमको साधना करनी पड़ेगी, ये भी समझना बहुत ही गलत बात है। सेटिस्फैक्टरी और एलैबोरेट मोर, इस पर किसी को कुछ कहना है? इस चर्चा के ऊपर। इसलिए अपने जीवन में साधना का अंग बनाओ। अगर आप साधना का अंग नहीं बनाते हैं, माफी चाहता हूं, हमारा जीवन जानवर से अलग नहीं है। प्लीज फॉरगिव मी, मैं ऐसे बोल रहा हूं, ये मेरे लिए भी लागू है जो मैं कह रहा हूं। अगर हमारे मनुष्य जीवन को प्राप्त करने के बाद भी अगर साधना के लिए हमारे पास विशिष्ट समय नहीं है लाइफ में, जो हम नहीं निकालते हैं और नहीं देते हैं उसको टाइम, तो हमारा जीवन जो है ना वो जानवर के ही बराबर है। क्योंकि जानवर के जीवन को साधना नहीं होती है, केवल आहार, निद्रा, भय और मैथुन, बस चारों कार्य करना है बस, और कुछ नहीं करना है। जब उसकी साधना आ जाती है तो उसमें मनुष्यत्व आ जाता है। मनुष्य कहने लगे लोग योग्य हम कह सकते हैं अपने आप, यह मनुष्य है। मनुष्य जीवन उसके लिए है जो भगवत प्राप्ति के लिए दिया गया है। हाँ प्रभु जी,
हाउ टू असेस साधना,
साधना को कैसे हम माप सकते हैं, साधना अच्छी है कि बुरी है। एक उसका प्रमाण है, आपके साथ में जो भक्त रहते हैं ना उनको पूछ सकते हैं आप, क्योंकि वो आप देख रहे हैं, आपको देख रहे हो। भक्त जो है ना वो एक बहुत कीमती वस्तु है, वो हर चीज को आपको सहायता कर सकते हैं। भक्त जो होते हैं ना बहुत दयालु होते हैं, बहुत सबसे हितचिंतक भक्त होते हैं हमारे जीवन में। उनको लगता होगा कि क्या है बार बार बोलते हैं जब करो ये करो वो करो, परेशान करते रहते हैं, ऐसा लगता होगा हमको। लेकिन वो हमारे हित की बात करते रहते हैं हमेशा। वो आपको क्या लगेगा उसकी सोचते नहीं होंगे शायद, आपके लिए अच्छा क्या है उसके बारे में हमेशा सोचते रहते हैं। माता पिता कैसे रहते हैं, पढ़ाई कर, खेलने को जा रहा है पढ़ो ना, कितने दुष्ट माता पिता है, खेलने को देते नहीं, हमेशा पढ़ाई करने को। लेकिन वो आपके भविष्य का और वर्तमान का और सबका हित सोचते रहते हैं, इसलिए आपके लिए वो बार बार टोकते हैं आपको। मित्र हैं आपको, सुहृद हैं, प्रेम करने वाले लोग हैं आपसे। तो एक भक्त है जो आपको बता सकते हैं आपकी साधना सही है कि नहीं है, और वो आपके ऊपर भी डिपेंड है कि अगर आप साधना कर रहे हैं तो आपको किसी को बताना चाहिए, प्रभु प्लीज टेल मी हाँ आफ्टर सम टाइम हाउ आई एम डूइंग, तो बताएगा ना वो। अगर वो लगे उसको लगेगा कि मैं बताया तो उसको बहुत गुस्सा आ जाएगा, तो फिर वो आपको पूछेगा ही नहीं कुछ, कि उसको विश्वास नहीं है कि अगर मैं कुछ कहूं तो आप उसको स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे। तो पहले आपको बताना चाहिए कि हमको 8 दिन के बाद पूछना है आपको, आप बताना, नंबर वन। नंबर टू, हमारे गुरुदेव अगर वो हमसे प्रसन्न है तो हम कह सकते हैं कि हमारी साधना ठीक हो सकती है। लेकिन अल्टीमेटली क्या है ना, वो भगवान हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, है ना। आपकी साधना क्या है इसका पूरे व्याख्या आपको की बताई गई ना, डेफिनेशन ऑफ साधना, और साधना इज डिफाइंड यू ना बाय गुरुदेव, कि आपको ये करना है, 16 माला करना है, 4 नियम पालन करना है, रोज शास्त्र पढ़ना है आधा घंटा क्यों ना हो, और प्रसाद खाना है केवल, बिना भगवान को भोग लगाए कुछ नहीं खाना है, ये भी आपको पता है, और नियमित रूप से भगवान के भक्तों का संग करना है, ये हमारा बेसिक साधना है। और उसके ऊपर अगर हमको कोई आज्ञा मिलती है गुरु की तरफ से, या गुरु के प्रतिनिधि की तरफ से, या गुरु के प्रतिनिधि के प्रतिनिधि की तरफ से कुछ आज्ञा मिलती है उस दिशा में, तो वो एक्स्ट्रा सेवा भी हमको करनी है। ये पूरा हमारा मिलकर साधना होता है। उसमें साधना में भगवान के दिव्य धामों का दर्शन करना एक साल में एक बार, ये भी साधना में आता है। जैसे ब्रजवासियों की सेवा करना, ये किसी की साधना में ये भी आता है। कुछ लोग मुंबई से आते हैं साल में एक बार, उनको आई कैंप में अपना सेवा देना है ताकि उनको वो साधना का हिस्सा मानते हैं उसको, तो ऐसे भी साधना के हिस्से होते हैं। साल में एक बार दर्शन करने जाना, साल में एक बार में सेवा करने जाना, या अपने परिवार अपने धन का जो हिस्सा है 20% धन पर 10% जो है भगवत सेवा में अर्पण करना चैरिटी के रूप में, ये सब साधना के हिस्से हैं। कुछ प्रधान हिस्से हैं, कुछ दुय्यम हिस्से। तो अगर व्याख्या आपके मन में फिट है कि हमको क्या करना है, तो आप सहभागी भक्त जो हैं उनके साथ बैठकर रेगुलर रूप में चर्चा कर सकते हैं, और अगर आप प्रामाणिक हैं उस चर्चा में तो आपको सही उत्तर मिल सकते हैं उस चर्चा से। क्योंकि अल्टीमेटली अगर जब प्रामाणिक आप होते हैं ना, तो भगवान भक्त के माध्यम से आपको गाइडेंस देंगे। हमारा पता है बेसिक प्रॉब्लम क्या है, हमारा बेसिक प्रॉब्लम यह है कि हम प्रामाणिकता में बहुत कमजोर है, we are very weak in sincerity. Where I'm not saying we are not sincere, but हमारी sincerity इतनी मजबूत नहीं है. उसकी वजह से क्या होता है कि सामने वाले को बोलना भी होगा ना आपको, तो वो हिचकिचाएगा बोलने के लिए आपको कि नहीं बोल पाऊंगा मैं, क्योंकि मुझे पता नहीं उनको कैसा लगेगा, इसलिए बोलेगा नहीं वो. लेकिन अगर आप इतने प्रामाणिक है कि सामने वालों को विश्वास है कि आपको कुछ भी कहेंगे ना अच्छी तरह से, मतलब आपके हित में, तो आप उसको सुन सकते हैं, तो फिर वो हिम्मत करेगा आपको बताने की कि प्रभु जी ये गलत हो रहा है आपकी तरफ से, ये नहीं होना चाहिए. और आप उसको थैंक यू बोलेंगे तो उसको लगेगा अरे हाँ अच्छा हो गया भाई, थैंक यू बोला कम से कम, तो वो गुस्सा करता तो मैं पता नहीं क्या करता. तो जब हम बोलेंगे थैंक यू प्रभु जी आपने मुझे बताया, मैं आपका रेडी हूँ, कृतज्ञ हूँ आपके लिए, हमेशा मुझे आप गाइड करते रहिए, ऐसे मैं आपका बहुत धन्यवाद दूंगा, तो उसको और उत्साह आएगा कि अगली बार भी वो कुछ बोल सकता है आपके लिए. तो साधना का जजमेंट जो है ना, एक आप स्वयं है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि आपकी साधना कैसे हो रही है. जब आप आश्वस्त हो जाएंगे ना कि मेरी तरफ से कम जितना मैं कोशिश कर सकता हूं वो मैं कर रहा हूं 100%, उसके बाद आप दूसरे को पूछ सकते हैं. बाय द वे, हाँ तब तक दूसरे को पूछना नहीं, उनका टाइम पास क्यों कर रहे हैं आपके लोग. जब आपको खुद को पता है कि मेरा ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर दूसरों को क्या पूछ के टाइम पास करवाने की जरूरत क्या है. वो भी आपको भी बोलेगा कि आप तो जपाई नहीं करते, हम दिखता नहीं कि आपको जप करने के लिए. आप जब अपनी साधना से अपनी तरफ से अगर संतुष्ट है, रिजनेबल या नॉट परफेक्टली, फिर आप दूसरों को पूछ सकते हैं कि प्रभु जी इसके ऊपर आप गाइड कर सकते हो क्या, तो आपको फिर वो गाइडेंस मिलेगा. लेकिन मेरा ऐसा एक, जैसे मैं अपने आप को जानता हूं बहुत अच्छी तरह से, मैं जानता हूं कि मेरी साधना सही नहीं हो रही है, 100% जानता हूं. तो फिर दूसरे के साथ आगे नाटक करने की जरूरत क्या है, प्रभु प्लीज गाइड मी, प्रभु आई वॉन्ट योर गाइडेंस, मुझे आपको सलाह दीजिए आप. मनुष्य के लिए ऐसा कहा गया है कि चार चीज में मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए. वन शुड नॉट बी सैटिस्फाइड विद फोर थिंग्स. एक है दान धर्म जो हम करते हैं ना, कभी भी संतुष्ट मत होइए कि मैं बहुत दान करता हूं, ऐसा मत सोचिए कभी भी. शुड नॉट बी सैटिस्फाइड, गिव डोनेशन और डोनेशन और डोनेशन, कीप गिविंग डोनेशंस वॉट एवर पॉसिबल. और हो सकता है कि चारों भी तुरंत याद नहीं आएंगे, लेकिन एक जो निश्चित याद है कि हमारे जब के ऊपर कभी भी हमको संतुष्ट नहीं होना चाहिए. देवर भी सैटिस्फाइड विथ योर चैटिंग, ये मुझे डिफरेंटली पक्का याद है बिल्कुल. और नॉलेज के बारे में, भगवान के प्रति जो ज्ञान है, जितना जितना आपको प्राप्त है उस पर आपको भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए. शुड नेवर बी सैटिस्फाइड, शुड ट्राई टू एक्वायर मोर नॉलेज अबाउट गॉड. एक हो गया चैरिटी, एक हो गया साधना या चैंटिंग, एक हो गया व्हाट नॉलेज, और एक फोर्थ है मैं लिख के भूल गया. और ऐसे कहा गया है कि दो बार पर हमेशा आपको संतुष्ट होना चाहिए. हो सकता है उसमें भी एक बात भूल रहा हूं मैं, लेकिन जो हमारे को भगवान ने दिया है धन के रूप में या प्रॉपर्टी के रूप में या तो जो भी प्रोविजन्स, हाँ जो भी हमको प्राप्त है आज के दौर में, आपको जो इस प्रकार की हवा प्राप्त है, इस प्रकार की ठंडी प्राप्त है, इस प्रकार का धन प्राप्त है, इस प्रकार का परिवार प्राप्त है, इस प्रकार का प्रॉपर्टी आपके पास में है, जो भी आपको मिला है आपको संतुष्ट होना चाहिए. इसके अंदर कभी भी उसके ऊपर रोना नहीं चाहिए कि अरे तो मुझे पास तो ये नहीं है, तुम्हारे पास तो है मेरे पास नहीं है, ऐसे तो ट्राई टू बी हैप्पी इन दैट. और परिवार के रूप में कहा गया कि जैसा हमारा पति है और जैसे हमारी पत्नी है, जैसा हमारा परिवार के सदस्य है, उनमें हमको संतुष्ट रहना चाहिए. डोंट लुक आउटसाइड कि देखो उनके घर में कितना अच्छा लड़का है, हमारे घर में तो गुंडा लड़का है. देखो उनके घर में कितना अच्छा पति है, वो तो कितना अच्छा काम करता है. वो पति हमेशा कहते देखो वो कितना अच्छा इडली बनाते, तुमको नहीं बना सकती. तुम जाके सीखा उसके पास. ऐसे हमेशा असंतुष्टि का ये प्रमाण है. लेकिन इसमें हमेशा जो भी प्राप्ति है, मैं तो कहूंगा जो भौतिक प्राप्ति जो भी आपको मिल रही है, जो कोई MBBS है, कोई MD है, कोई BCOM है, कोई कुछ है, भगवान की दया से जो भी हमारे कर्म है उसके हिसाब से हमको वो प्राप्त है, वी शुड बी ऑलवेज हैप्पी एंड सैटिस्फाइड इन दैट. तो उस तरह से साधना में हमें कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, नेवर. भगवत धाम में जाके भी क्या करना है, जो आज आप साधना के रूप में हाँ बहुत कष्ट करके, बहुत परिश्रम करके, बहुत मेहनत करके, त्याग करके हाँ करने का प्रयास कर रहे हैं, वो बड़े प्रेम से हमको वहां करना है। यही फर्क है, कुछ नहीं। साधना मतलब वो काम दिया गया है जो बड़े प्रेम से हमको भगवत धाम में जाके करना है। तो यहाँ पर बड़े प्रेम से नहीं हो रहा है, बहुत कष्ट पूर्वक हो रहा है, वो मेहनत पूर्वक हो रहा है, परिश्रम पूर्वक हो रहा है, पसीना बह रहा है कभी कभी, बहुत अच्छा भी लगता नहीं है, जैसे कड़वी दवा होती है ना कैसे, तो आज वो दवा आपको लेनी है लेकिन वो कड़वी लग रही है, हमको परेशानी हो रही है, लेकिन वही दवा बड़े प्रेम से जब हम लेंगे उसमें से अमृत का स्वाद का अनुभव करेंगे, वो दवा वही है, हमारे रोग की वजह से आप कड़वी लग रही है लेकिन वो अमृतमयी स्वाद है उसके अंदर, उस स्वाद को जब हम अमृतमयी स्वाद के रूप में अनुभव करने का स्थिति में पहुंचेंगे तो वही दवा मतलब अभी दवा है वो, बाद में दवा नहीं रहेगी, वो तो आप लेना चाहेंगे उसको बार बार, उस स्थिति में वो जाके वहां करना है, दैट्स ऑल नथिंग एल्स। यहां पर आपको कोई दूसरा फॉर्मूला दिया नहीं है, यहां पर एक फॉर्मूला है, ये यहां खत्म होगा बाद में छोड़ देना है उसको, बाद में वहां कुछ अलग करना है, नहीं, हमको वही फॉर्मूला यहां दिया गया है जो बड़े प्रेम के साथ में वहां पर निभाना है, तब तक हमको यहां रहना है, जब वो अमृतमय स्वाद लगेगा हमको उसका तो हम वहां जाने के योग्य हो जाएंगे। और कोई प्रश्न है किसी का? यस प्रभु,
सबसे पहले मैं आपके चरणों में साष्टांग करना पड़ा।
जय श्री राधे, मेरा भी साष्टांग नमस्कार।
मैं पूछना चाहता हूँ कि सर भावी और पूर्ण भक्ति होती है क्या, वो सही है?
बिल्कुल होती है।
जैसे अभी कुछ दिन पहले की बात है सर, मैं भोग लगा रहा था बागे बिहारी जी के बाद, तो पुलाव बनाए थे सर, तो उसके बाद भोग लगाने के बाद जब मैंने चखा तो मेरे को लगा कि इसमें नमक कम है, फिर मैंने नमक और ऐड करके उसमें फिर वापस भोग लगा दिया, फिर मुझे बाद में बात आई कि ये तो भगवान पाप देंगे, अब स्वीकार किया नहीं किया।
इसे रागानु का भक्ति। तो आपका प्रश्न क्या है?
मतलब जैसे जिस तरीके से भाव में बैठकर वापस से भोग लगाया तो क्या ये सही है?
नहीं नहीं, अभी हमको भगवान को भोग लगाने पहले सब ध्यान पूर्वक करना चाहिए, इसलिए ऐसे कहा गया है कि जब किचन में कोई भक्त भक्त प्रसाद बनाता है ना, कभी भी कोई माता हो या प्रभु हो, कोई भी भक्त प्रसाद बनाता है तो किचन में एक नियम होता है कि किचन में कोई बात नहीं करते, वो ऐसे बेकार में नियम नहीं बनाया उसका, बात क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि बात करेंगे तो हमारा मन बहकेगा ना, यहाँ वहां विषय में क्या डिस्कस हो जाएगा, कहीं वहां भटकेगा मन, तो इसलिए किचन का नियम है कि भगवान के किचन में जब भगवान के लिए भोग बनता है तो शांति रखनी चाहिए, क्योंकि एकाग्र होकर हम उस व्यंजन को बना सकते हैं, तब जाकर उसमें नमक भी कम नहीं गिरेगा, शक्कर भी कम नहीं गिरेगी, मसाला भी कम नहीं गिरेगा, सब कुछ पर्याप्त मात्रा में उत्तम वृत्ति से जो आपने लिख के रखा है वैसे आपका वो बनेगा। लेकिन जब हम ध्यान पूर्वक नहीं बनाते हैं तभी फिर ये नमक कम हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, क्योंकि हमारा ध्यान पूरी तरह से उसके अंदर नहीं है। जैसे बालक को जब आप स्तनपान कराते हैं कोई, तो ध्यान पूर्वक नहीं करेंगे तो वो फिर वो उस पर गड़बड़ हो जाता है। तो बालक को आप नहला रहे हो और आपका ध्यान मोबाइल पे है, आप कोई मोबाइल पे बात करते करते आप बालक को खिला रहे हो, नहला रहे हो, वो गड़बड़ हो सकता है उसके अंदर। ड्राइविंग कर रहे हो समझो, और कोई घर विषय में चर्चा कर रहे हो तो जरूर एक्सीडेंट होगा आपका। उसी तरह से कहा गया है कि जब भगवान के लिए आप कुछ करते हो तो बड़ी एकाग्रता से करना चाहिए, और अगर समझो आपने अर्पण कर दिया उनको तो उसके बाद में अगर आप भोजन कर रहे हो तो उसको वैसे आपको खाना चाहिए, क्योंकि तो अगर भगवान ने नमक के बिना खाया है तो आपको भी नमक के बिना ही प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। ये बहुत गलत भक्त लोग करते हैं कि भगवान को अर्पण कर लिया फिर अरे वो तो नमक कम हो गया, फिर वो नमक मिला के फिर सबको सर्विस कर देते हैं, दैट इज नॉट करेक्ट। जैसे आपको भगवान को आपने खिलाने को मजबूर कर दिया तो आपको भी वैसे खाना है उसको बाद में। और भाव विभोर भक्ति का प्रश्न आपने पूछा ना, ये तो बहुत ऊंची स्थिति है। तीन तरह की भक्ति होती है, एक होती साधना भक्ति, एक होती है रागानुगा भक्ति, एक होती है भाव भक्ति, और चौथी होती है प्रेम भक्ति। तो हम सब लोग साधना भक्ति में है, साधना भक्ति सब नियम पूर्वक उसका पालन करना पड़ता है, और रागानुगा भक्ति जो है उत्स्फूर्त होती है, स्पॉन्टेनियस कहते हैं उसको, उसी से भाव का निर्माण होता है, उसी से प्रेम उत्पत्ति होती है। तो अभी हम लोग कोई भाव विभोर भक्ति में नहीं है हम लोग सब लोग। भाव भक्ति में कैसा होता है कि वो हमारे गुरुदेव के किताब में एक भक्त का वर्णन आता है घनश्याम दास बाबा, वो तो ऐसे थाली में से चमचे से ऐसे भगवान के मुंह के सामने खिलाते थे, वो पिजाना वाला खाओ उसको, ऐसे रोटी ऐसे खिलाते थे। बहुत ऊंची स्थिति है, उसका नकल नहीं कर सकते हम लोग। भक्त तो भगवान को डांटते भी है कभी कभी। हमारे लिए वो गौरीदास पंडित नाम के भक्त थे चैतन्य महाप्रभु के समय, जो अंबिका पालन में रहते थे, वो डांटते थे भगवान को, मतलब माता पिता के भाव से, वात्सल्य भाव से। वो बहुत ऊंची स्थिति है, उसका नकल नहीं कर सकते हम लोग। लेकिन अगर हृदय में भाव सही है तो भगवान उसको बुरा नहीं मानते, भगवान को अपराध नहीं स्वीकारते। लेकिन हमको ये समझना नहीं चाहिए कि हम उस स्थिति में है, हमने तो भाव में कर दिया, भगवान तो भावग्राही है तो फिर वो ले लेंगे, ऐसा हमको समझना नहीं चाहिए। अगर भगवान समझते हैं कि आप भाव भक्ति के भक्त हो तो सही बात है, अगर हम समझते कि हम भाव भक्त हैं और हम भगवान से वैसे सेवा करेंगे तो वो गलत बात है। भक्त जो है कभी भी अपने आप को प्रेमी भक्त भाव भक्त नहीं समझता है। भक्त कम अधिक से अधिक अपने को क्या समझेगा कि मैं साधना भक्त हूं। वो भाव भक्ति की स्थिति में होगा भी, फिर भी वो अपने आप को साधना भक्ति मानेगा और साधना करता ही रहेगा। जैसे हमारे सनातन गोस्वामी थे, 70 साल के आयु में वो रोज उनकी साधना करते थे, गिरिराज की लंबी परिक्रमा 40 किलोमीटर वाली। एक बार भगवान स्वयं प्रकट हो गए बालक के रूप में और उनको बताया क्यों कर रहे हैं आप इतनी तकलीफ, 70 साल की इतनी बुरी अवस्था में आप अभी भी परिक्रमा दे रहे हो, बंद कर दो यार, भगवान संतुष्ट है आपके ऊपर। फिर भी वो कह रहे नहीं नहीं मेरा तो ये वादा है और मैंने प्रण लिया है, मैं रोज करते रहूं। अब चल रहे धीरे 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 धीरे, भगवान ने हमको दर्शन दिया, स्वप्न में दर्शन दिया, पहले शिला ला के दिया बालक के रूप में और फिर आदेश दिया, फिर उन्होंने छोड़ दिया। भगवान को इंटरप्रेट करना पड़ा बीच में, इतनी उच्च स्थिति में थे। लेकिन वो अपने आप को इतने उच्च स्थिति वाले भक्त नहीं मानते थे, इसलिए 70 वर्ष की आयु में भी वो साधना कर रहे थे जो 20 साल की उम्र में कर रहे थे। भक्त का लक्षण ये होता है, सबसे बड़ा लक्षण क्या होता है, नम्रता। जितना भक्त प्रकट हो जाएगा ना, जितना ऊंचा पद पर प्रगति करेगा उतना वो अपने को नीचा मानेगा। ये एक एडवांस भक्त का लक्षण है, वो जितना एडवांस्ड है, जितना वो प्रगत भक्त है, उन्नत भक्त है, उतना ही अपने आप को तुच्छ मानेगा। ये उसका उच्च होने का एक लक्षण है कि वो अपने आप को तुच्छ मानेगा, नाटक के रूप में नहीं, अरे प्रभु आई एम सो फॉलन, ऐसा नहीं, हृदय से उसको लगेगा कि मैं वास्तव में तुच्छ। क्योंकि प्रगत होने का मतलब यही है कि मैं भगवान का कितना अनुरूप अंश हूं, कितना तुच्छ अंश हूं, ये अनुभूति होना ही प्रगति है। और मैं प्रगत भक्त हूं यह समझना मतलब ये हमारे पतित होने का लक्षण है। अगर मैं समझता हूं कि मैं बहुत प्रगत भक्त हूं, बहुत एडवांस भक्त हूं, तो ये मेरे पतित होने का प्रथम लक्षण है। तो मैं समझता हूं अपने बारे में। और कोई प्रश्न है? यस मैम।
Perform devotional service or chanting, but you when you keep trying, you find it your constant failure in your attempts. Then what should you do?
इनका प्रश्न ये है कि आप भगवान की भक्ति sincerely करना चाहते हैं, तो प्रयास भी कर रहे हैं, और उस प्रयास में हमेशा हमको अपयश ही आता है। Is that right? हमेशा हमको यश प्राप्ति नहीं होता, हमेशा प्रयास करते हैं और ठोकर खाते हैं, प्रयास करते ठोकर खाते हैं। तो क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उत्तर देना बड़ा आसान है लेकिन उत्तर बड़ा कठिन है। उत्तर ये उसका है कि हमको अपना कोशिश जीवन भर करते रहना चाहिए, चाहे अंतिम क्षण तक हम ठोकरे खाते रहेंगे, ये उसका एक्चुअल उत्तर है। मैं जानता हूं कि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन अपयश मतलब क्या, आप कुछ कोशिश कर रहे हो और वो नहीं हो रहा है, लेकिन हमको जानना चाहिए कि ये सबके नियंत्रक भगवान है, जिनको सेवा करके प्रसन्न करने का हम प्रयास कर रहे हैं, वो सबके, हमारी सेवा के भी नियंत्रक वही है, स्थिति के भी नियंत्रक वही है, आपके प्रयास के भी नियंत्रक वही है। जो प्रयास आप कर रहे हो उसकी शक्ति के नियंत्रक भी वही है, जितनी शक्ति आपको उन्होंने दिया है प्रयास करने के लिए उसके भी कंट्रोल वही है, और वो जानते हैं कि आप क्या कर रहे हो, कितनी मेहनत कर रहे हो, कितना प्रयास कर रहे हो, कितनी सिंसियरली आप कोशिश कर रहे हो, उनकी सेवा में ही उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए आप कुछ प्रयास कर रहे हो। इसलिए अगर इतना सब करने के बाद भी उनकी ओर से हमको अपयश मिलता है, मैं उनकी ओर से क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हम समझते हैं कि हम कर रहे हैं और यश मिलना चाहिए। लेकिन यश और अपयश देने वाले वही है जो हमेशा आपके हृदय को भी देखते हैं कितना प्रामाणिकता से आप कर रहे हो और आपके प्रगति होने के लिए क्या जरूरी है वो फल भी वही देते हैं। तो हमको लगता हुआ कि हमने इतना प्रयास किया है हमको इस प्रकार से इसका फल मिलना चाहिए ऐसा हमको लगता है भगवान की भक्ति में। लेकिन भगवान हमसे अधिक जानते हैं कि हमारे लिए अच्छा क्या है। इसलिए हमारा लौकिक दृष्टि से यानी कि मटीरियली स्पीकिंग लुकिंग एट द सिचुएशंस व्हाट इज गुड और बैड इज आवर थिंकिंग ये हमारा थिंकिंग है। लेकिन हमारे भक्ति के प्रगति के लिए जो भी अनुकूल है वो हमें अच्छा लगे या न लगे वैसे ही भगवान हमारे लिए करते रहते। ऑल दैट इज अराउंड यू एंड मी अराउंड ऑल ऑफ अस इज परफेक्टली अरेंज्ड फॉर अस टू मेक प्रोग्रेस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। यही हमारी अनुभूति होनी चाहिए कि जो भी हो रहा है हमारा काम करना है उसको कैसा फल देना है यश देना है अपयश देना है भगवान के हाथ में। और अपयश आने के बाद में निरुत्साह होता है वी गेट डिस्करेज्ड वी फील डिस्पोंडेंट वी फील कि वो भी करना है हाउ मेनी इयर्स आई विल कीप डूइंग इट ऐसा लगता है हमको कभी कभी कितना साल करेंगे अभी इतने साल के बाद भी क्या करूंगा और ऐसा लगता है हमको। लेकिन निराश होना भी एक माया का अटैक है यू फील टू मच डिस्पोंडेंट इट विल माया सक्सेसफुल टू डिस्करेज यू फ्रॉम योर डिवोशनल सर्विस। ये बहुत कठिन बात है इतनी आसान बात नहीं बोलना बहुत आसान है यहां बैठकर लेकिन फिर भी भक्तों की सहायता से उनसे संग लेकर उनके उत्साह लेकर करते रहना उसी बात को करते रहना मतलब करते रहना। फॉर एग्जाम्पल शबरी शबरी को बचपन में 5 साल की उम्र में बताया गया था कि आपको भगवान मिलेंगे और इतनी भाव विभोर हो गई कि वो पूछना भूल गए कब मिलेंगे तब तक संत लोग सब चले गए थे गुरु महाराज सब। तो रोज उसने बेर निकाल के रखे रोज फूल सजाए रोज 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 85 साल की उम्र तक उन्होंने यही किया। ये कहानी मुझे निकुंज बहन माता जी ने बताई थी मुंबई में अभी भी याद है मुझे बहुत सुंदर कहानी। अभी अगर उसको आप 45 साल की उम्र में मिलते थे समझो यू फील मेट हर एट 45 इयर्स ऑफ एज तो क्या बोलते थे आपको 40 साल से मेहनत कर रही अभी भी प्रभु नहीं आए। अगर आप उसको 65 की एज मिलते थे तो बोलेगी कि अभी तो 60 साल हो गए अभी भी नहीं आए। लेकिन 80 साल में मिलते तो बोलते थे कि 75 इयर्स हो गए अभी तो मैं बुढ़े हो गए दांत भी गिरने लगे तो तुम्हें जवान बच्ची थी अभी तो दांत नहीं रहे दृष्टि भी नहीं रही बाल भी सफेद हो गए अभी शक्ति भी नहीं रही। लेकिन कभी भी उसने अपना जो सेवा जो था उसका कभी छोड़ा नहीं उसने। और लास्ट में मे बी 85 इयर्स के एज में जब वो झुक गई थी पूरी उसको शक्ति भी नहीं थी और वो रास्ता सजा रही थी मार्ग फूलों से बेर निकाल के रखे थे उसने और ठाकुर जी प्रकट हो गए उनके सामने। अगर ठाकुर जी प्रकट भी नहीं होते ना और समझो वो चली भी जाती इस दुनिया से तभी भी वो अयशस्वी नहीं थी शी वॉज नेवर अनसक्सेसफुल। व्हाट इज अवर सक्सेस इज टू अटेम्प्ट 100% फ्रॉम द बॉटम ऑफ अवर हार्ट द फुलेस्ट कैपेसिटी ऑफ अवर्स इज अवर सक्सेस। इवन इफ होल लाइफ गोज इन फेल्यूअर्स but whole life you have attempted 100% within your capacity whatever God has given you you are successful। तो ये भक्ति जो है ना ये बहुत साधारण विषय नहीं है बहुत उसमें गहराई है। भक्ति life is a very deep affair। तो गुरु महाराज भी आंसर ऐसा देते हैं keep trying whole life keep trying। अभी हम लोग बोलते हैं कि नाम पे हमारा जप में ध्यान लगता ही नहीं है 25 साल हो गए अभी और क्या कोशिश करेंगे 25 साल के बाद भी थोड़ा भी रुचि नहीं आ रही उसके अंदर कोई बात नहीं और 25 साल में जाने दीजिए कोई बात नहीं कोशिश करते रहिए यू डू योर बेस्ट बस। प्रश्न ये है कि क्या मैं मेरा 100% कोशिश इसमें दे रहा हूं क्या दैट इज ओनली क्वेश्चन एंड आंसर विल कम मोस्टली नो 99.99% इज देयर अनलेस 1% इज नॉट देयर। और आपको सबको पता है बोल रहे कि हम लोग एक्चुअली वो कोशिश उतनी कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे ऐसा लगता है हमको कर रहे हैं लेकिन जानते भी है कि और थोड़ा कर सकते हैं। भगवान जो है अपयश देकर हमको लगता होगा कि निरुत्साह करते हैं लेकिन अपयश देकर हमारे आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाते हैं ही मेक्स यू स्पिरिचुअली वेरी स्ट्रांग। कितने भक्तों का उदाहरण है, कितना उन्होंने परीक्षा लिया उनका। वैसे आपका भी भगवान परीक्षा लेते होंगे, और एक एक परीक्षा के साथ में, एक एक घटना के साथ में, और आपको और मजबूत बना रहे, और मजबूत बना रहे, और मजबूत बना रहे। तो हमारे पास इसकी पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। हमारी स्थिति बहुत कठिन होगी, बहुत चैलेंजिंग होगी, बहुत आह्वानात्मक होगी, लेकिन फिर भी भक्त जो है वो कभी निराश नहीं होता। और ऐसे कहते हैं कि जब बहुत सारी निराशा आ जाती है, और उस निराशा में भी जब हम आशा को देखते हैं तो भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। अगेन इंग्लिश, व्हेन वी सी होप इन द मोस्ट होपलेस कंडीशन, दैट इज सपोज टू बी द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। इफ डोंट लूज होप्स, स्पिरिचुअल लाइफ इज नेवर होपलेस, इट अपीयर्स होपलेस। जैसे गोपियों की स्थिति कैसे थी, वो बोले मैं परसों आ रहा हूं, हाँ तो गांव है एक परसों नाम का, बोल गए थे मैं परसों आऊंगा, लेकिन परसों नहीं आए, वो 100 साल के बाद में आए। वो तो मरते 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 ऐसे मरणासन्न अवस्था में चली गई थी, वो विरह के रूप में, तभी तक नहीं आए वो। हाँ, 10 साल का संग और 100 साल का विरह, ये उनकी जीवन की कहानी है इन वन लाइन, वन डेकेड ऑफ एसोसिएशन, वन सेंचुरी ऑफ सेपरेशन, ये उनके लाइफ का एक गणित है। लेकिन फिर भी कभी भी ऐसा नहीं हुआ, किसी भी शाम को ऐसा नहीं हुआ कि उस शाम को गोपियां बड़ी निराश होकर तैयारी कर रही थी, नहीं आज भी नहीं आएंगे, लेकिन प्रत्येक कोशिश, ऐसा नहीं, फुल फ्लेजेड 100% रिन्यूड एंथुसियाज्म, वो दोबारा तैयारी करती थी कि आज आएंगे, और फिर भी नहीं आते थे, फिर दोबारा सुबह उठकर फिर वही करते थे, रात भर होते थे और फिर सुबह उठकर आज शाम को आएंगे, इस तरह से पूरी तैयारी करते थे, पूरे उत्साह के साथ। तो ये बहुत कठिन है, लेकिन ये हमारा, दिस इज अवर व्हाट यू कॉल आदर्श, दिस इज अवर व्हाट यू कॉल द गोल, वेरी हाई गोल। इसलिए जितना हो सके उतना निराश न होने का प्रयास करिए, हम करना चाहिए, इसलिए भक्तों का संग जरूरी है। जब हम निराश होने लगते हैं तो भक्तों का संग करना चाहिए तुरंत, भक्त हमको उत्साह दे सकते हैं, भगवान भक्तों के माध्यम से हमको उत्साह देंगे, और इसमें से भक्तों को गुजरना पड़ता है, कभी बार भर बार गुजरना पड़ता है। कई बार ऐसे अनुभव आते हैं, मन छिन्न विच्छिन्न हो जाता है, मन थक जाता है, मन निश्चय को खो बैठता है, मन उत्साह को खो बैठता है, सारा वो जो जिसके लिए भक्त बने थे वो ही सब खत्म होते नजर आता है, ऐसा कभी कभी होता है। तो भगवान के द्वारा भेजी गई एक स्थिति ऐसी है, उसमें भी जब हम भगवान को देखते हैं तो हम यशस्वी हैं। तो नथिंग हैपन्स विदाउट हिज प्लान, हमको एक बात का पता होना चाहिए 100% हर भक्त को जो जप करने का प्रयास कर रहे हैं, हमको ये बात पर 100% विश्वास होना चाहिए कि जो भी हो रहा है ये इनकी इच्छा से हो रहा है नंबर वन, और जो भी हो रहा है मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, दोनों चीज हमको पता होना चाहिए। अगर वो मेरे लिए अच्छा नहीं है तो हमारे भगवान, जो हमारे प्रेमी भगवान, कभी भी नहीं करेंगे उसको, और ऐसी कोई घटना नहीं है जो उनकी इच्छा बिना होती है, हर वस्तु हर घटना उन्हीं की दिशा में, उन्हीं के दिग्दर्शन में, डायरेक्शन में होती है। चाहे आपका मृत्यु हो रही हो वो भी इनकी इच्छा से हो रही है, और आपके अच्छे के लिए है इसलिए हो रही है। ये जो आशा है ना, ये किसी भी मनुष्य को हर समय उत्साहित और जीवित रख सकती है भगवान की भक्ति में। वी कैन रिमेन अलाइव इन आवर डिवोशनल सर्विस बाय वन फेथ दैट एवरीथिंग हैपेंस बाय हिज डिजायर एंड एवरीथिंग हैपेंस फॉर आवर बेस्ट ओनली। ये श्रद्धा होने से आदमी निराश नहीं होता है। निराशा एक बहुत ही दुखजनक घटना है, जो माया देवी हमेशा आपको निराश करने का प्रयास करेगी। व्हाट इज हर बिगेस्ट प्रॉब्लम विथ यू, दैट यू आर एंथुसियास्टिक इन सर्विंग कृष्णा, बिगेस्ट प्रॉब्लम, शी वॉन्ट्स टू अटैच देयर वेरी एंथुसियाज्म ओनली। आपका डेडिकेशन, आपका उत्साह, आपका समर्पण, ये आपकी शक्ति है, और माया के लिए थ्रेट है वो, कि आप समर्पित हैं, आप डेडिकेटेड हैं, आप उत्साही हैं, तो माया कहीं ना कहीं कोशिश करके आपका उत्साह समर्पण निश्चय ही तोड़ने का प्रयास करेगी। दैट इज हर प्लान, बट विथ हेल्प ऑफ कृष्णा वी विल नॉट लेट माया बी सक्सेसफुल। माया कैनॉट टच यू अनलेस यू अलाउ हर टू. ये माया का एक पावर का एक लिमिट है. माया बहुत पावरफुल है, नो डाउट अबाउट. कृष्ण स्वयं बोलते हैं कि मेरी माया जो है बहुत भयंकर शक्तिशाली है, नॉट ऑर्डिनरी. हाँ, दुरात्या भगवान अपनी शक्ति का वर्णन कर रहे हैं. लेकिन उसका भी एक लिमिट है कि जब जब तक आप नहीं उसको हाँ कहते हो तब तक वो अपना कार्य आपके ऊपर आरंभ नहीं कर सकती. शी कैन नॉट लेट यू टच यू नो. दैट इज अ वेरी गुड थिंग एक्चुअली इन सेंस. जब हम कहते हाँ अभी हार गया तो फिर तुरंत वो पकड़ लेते हैं अपने आप. लेकिन जो भगवान का सहारा लेता है उसको माया नहीं छू सकती. कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्णा तहन नाई माया अधिकार. इस पर भी हमको विश्वास होना चाहिए. तो अभी वो अगर निरुत्साह हो रहा है, अपयश आ रहा है, तो क्या करना चाहिए? और अधिक जोर से, बलपूर्वक, उत्साह से या श्रद्धा से, भावना से भगवान नाम का आश्रय ग्रहण करना चाहिए. ये सब घटनाएं क्यों होती है? अपयश मिलते रहता है, फेलियर होते रहता है, क्यों होता है? कितना अधिक तीव्रता से हम भगवान के नाम का आश्रय ले रहे हैं, इसके लिए एक मौका है हमारे लिए. इस अनदर अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू इफेक्टिवली टेक शेल्टर ऑफ द होली नेम ऑफ द लॉर्ड. सो अल्टीमेटली इवेंट्स यू अपना जीवन समाप्त होने को आएगा ना, तो ये सारी घटनाएं बहुत नगण्य हो जाएगी. Once we end our life, is this devotional life, I mean this life itself, all the events that happened in life now will become very insignificant. What will remain significant that time, what will become very prominently significant is how we took shelter of the holy name in all conditions of life. That will remain very prominent. कि हर एक अवस्था में जो दुख भरी थी, जो निराशाजनक थी, निरुत्साही होने वाली थी, जो अपयशपूर्ण थी, उस सारी अवस्था में मैंने भगवान के नाम का सहारा कैसे लिया, यही एक प्रधान वस्तु रहेगी हमारे एंड में, सार रूप में. और उसी को भगवान ग्रहण करेंगे कि मैंने इसको इतना कष्ट दिया फिर भी इसने मेरा सहारा नहीं छोड़ा. उसी बात को भगवान ग्रहण करेंगे और तुरंत हमको अपने पास ले जाएंगे. दैट इज अवर ग्रेट, क्या कहते हैं, होप नहीं कहूंगा मैं, दैट्स अवर ग्रेट फेथ. विल नेवर लेट अस डाउन. कृष्ण कभी भी अपने भक्त को ऐसा पराजित दिखना नहीं चाहते. केवल टेस्ट करते हैं लेकिन हमेशा सहारे के लिए तैयार रहते हैं. और हर कठिन प्रसंग में सबसे पहले हमारा मन जो है भगवान के नाम की ओर दौड़ना चाहिए. यू हैव टू टेक शेल्टर ऑफ द होली नेम. और उस भगवान के नाम के सहारा लेने की जो प्रक्रिया है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग शेल्टर ऑफ द होली नेम, सो पावरफुल कि बहुत भयंकर निरुत्साह वाली स्थिति में भी आप उत्साही और आनंदी रह सकते हैं. यू कैन रिमेन ब्लिसफुल, स्माइलिंग प्राउड, हैप्पीली, ट्रूली, हार्टफुली यू कैन स्माइल. इतनी शक्ति है उसके अंदर, क्योंकि भगवान जो है ना वो अभिज्ञ और स्मराट है, वो क्या नहीं कर सकते. वो हर निरुत्साही अवस्था के अंदर उत्साह डाल सकते हैं, हर बेजान अवस्था में जान डाल सकते हैं. यू कैन पुट लाइफ इन टू अ मोस्ट डेड सिचुएशन. इट्स द पावर ऑफ द लॉर्ड एंड इज होली नेम. सो वी मस्ट टेक शेल्टर ऑफ द होली नेम. एंड एक बार आपने अगर पूरा कोशिश कर लिया है अपनी तरफ से, क्यों ना हो कम से कम, लीव इट टू द लॉर्ड एंड प्रे टू हिम. आप यही चाहते हो, मुझे मंजूर है. अगर आप यही चाहते हो तो मैं उसके लिए तैयार हूं. और आप कुछ करना चाहते हो, you are free to do whatever you want as a result of my activity, but I will remain yours in all conditions of life. सभी स्थितियों में, यश के, अपयश के, उत्साह के, निरुत्साह के, आनंद के, दुख के, शरीर के अस्वास्थ्य के, सभी अवस्था में मैं आपका रहूंगा हमेशा. I will not leave you. You may kick me away, but I will not leave you. ये हमारे जीवन की श्रद्धा होनी चाहिए. और ऐसा भक्त जो होता है वो कभी भी दुखी नहीं रहता है. He is always happy. जो भी है फाइन. जब तक मेरा भगवान के नाम का संपर्क है, टिल द टाइम द होली नेम इज अवेलेबल फॉर मी टू कम्युनिकेट, आई हैव नथिंग टू फियर. दैट शुड बी अवर फेथ. हरे कृष्णा. आई होप आई कैन फॉलो व्हाट आई प्रीच. हरे कृष्णा. और कोई प्रश्न है किसी का? आप लोगों को मेरी विनती है, आपको लगता होगा मैं हर बार आके यहाँ पर यही बताते रहता हूँ, हर बार नहीं आने वाले 25 साल में मैं वही बताते रहूंगा कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक पक्का अंग साधना का देना चाहिए। एवरीबडी हैज टू हैव, हर एक व्यक्ति के जीवन में जो समय आपको दे रहे भगवान उसमें आपको कुछ हिस्सा उनके नाम जप की साधना में देना है। डोंट मेक इट अ पिकनिक अफेयर, मतलब 6 महीने में एक बार हम लोग जाते हैं पिकनिक में घूमने के लिए, ये ऐसा काम नहीं है। इट्स नॉट अ वीकेंड बिजनेस, तुम्हें छुट्टी में करना है, संडे को करना है, जब गवर्नमेंट हॉलीडे होती है, बैंक हॉलीडे तभी करना है, ऐसा कार्य नहीं है ये। जैसे निद्रा है, जैसे भोजन है, वैसे ही भगवान नाम की साधना होनी चाहिए। निद्रा के बिना रह सकते क्या हम लोग? नहीं रह सकते। और नहीं मिलेगा तो हम तड़पेंगे, निद्रा नहीं पूरी हुई है, सर दुखेगा, सर भारी हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या होगा हमको, तुरंत उसके लक्षण दिखाई पड़ेंगे कि आपको निद्रा नहीं हुई है आपकी, भोजन नहीं मिला तुरंत आपके लक्षण प्रकट हो जाएंगे, आपको भोजन नहीं मिला है तो आप तड़पेंगे, कमजोर हो जाएंगे, हाथ पांव कांपेंगे, आपका दिमाग नहीं चलेगा आपका। वैसे ही नाम जप नहीं करने से हमारी अवस्था होनी चाहिए। नाम जप किए बिना हमारी जल बिना मछली वाली अवस्था होनी चाहिए, तब हम मनुष्य कहने के योग्य। अगर नाम जप नहीं हुआ है फिर भी सब कुछ चल रहा है, हम भी वैसे ओके हैं, टीवी देख रहे हैं, तो ये हमारी बड़ी रोगी अवस्था है। दिस इज अ वेरी डिसीज्ड कंडीशन ऑफ लाइफ। आप लोग भक्तिविदान हॉस्पिस में बरसाना में सब लोग जुड़े हुए हो, आपको पता नहीं आपका भाग्य कितना भव्य है। नॉट बिकॉज आप लोग भक्तिविदान हॉस्पिटल में बैठे हो, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ दैट, ऑल्सो बिकॉज ऑफ दैट, बट आपको ब्रज में सेवा मिल रही है, भगवान के धाम में सेवा मिल रही है। और यहां रहकर भी हमारे अगर जीवन में साधना के लिए विशेष अंग नहीं है, हमारे जीवन में एक ऐसा कोना नहीं है हमारे जीवन का जो साधना के लिए समर्पित है, तो बड़े दुर्भाग्य है हम लोग, वेरी अनफॉर्चुनेट। अगर ऐसा नहीं है तो भगवान ने सब कुछ दिया है, भगवान ने अपनी तरफ सब कुछ प्रोविजन आपको दे दिया है, चलो मेरी भक्ति करने के लिए अनुकूल वातावरण दिया आपको। बहुत लोगों को ऐसे जगह काम करना पड़ता है, वहां पर मां बहन की गाली देते हैं, क्या क्या होते रहते हैं। हमारा भाग्य है कि हम लोग हमारे अस्पताल में बड़े अच्छे वातावरण में काम करते हैं, अच्छे लोगों के साथ में, अच्छे व्यवहार वाले लोगों के साथ में, अच्छे उद्देश्य वाली संस्था में मैं काम कर रहा हूं, मेरा भाग्य है ये। और ऐसा होने पर भी अगर मैं ठीक साधना नहीं करता हूं भगवान के लिए, तो फिर और भगवान क्या कर सकते हैं? उन्होंने सब कुछ आपको दिया है, उसका लाभ लीजिए। संग दिया भक्तों का, कौन सी कंपनी में, ब्रज में भी कौन सी कंपनी में ऑन ड्यूटी सत्संग होता है? होता है क्या कोई कंपनी ब्रज के अंदर, मथुरा के अंदर, बरसाने के अंदर, या कोई छाता के अंदर, या कोई वृंदावन के अंदर, कोई कंपनी ऐसी है ऑन ड्यूटी आपको पगार देके सत्संग कार्यक्रम का योजना बनाई और वो फोर्स करते कि आपको आना ही आना है? ऑप्शनल नहीं है कि आना है आपको, आपको जरूरी है। ऐसे संस्था का ही ब्रिज है, मुझे भी आश्चर्य होता है कि मैं ऐसी संस्था में काम कर रहा हूं। ऑन ड्यूटी है ना, ऑन ड्यूटी हम लोग जाके हमारा 4 माला जब पूरा कर सकते हैं संध्या जागृति के अंदर, रियली सुबह नहीं पूर्व हुआ 4 माला बाकी है, संध्या जागृति में ऑफिशियली जाके मैं 4 माला जब करके आ सकता हूं, लेकिन हम लोग फिर भी उसमें रुचि दिखाते नहीं, लाभ नहीं लेते उसका। तो ये सब प्रभुपाद जी की असीम कृपा है, संतों की कृपा है, उसका लाभ लेना चाहिए पूरी तरह से। और जो धाम वास बहुत गिने चुने लोगों को मिलता है, किसी को जन्म के बहाने मिलता है, जिसका जन्म यहां हो रहा है, किसी को यहां निवास मिल रहा है सेवा के माध्यम से, इसका ट्रांसफर यहां पर हो रहा है, किसी को किसी बहाने किसी बहाने किसी बहाने कोई पुराने अच्छे संस्कार की वजह से हमको ये मौका मिल रहा है और ऐसा होने पर भी अगर हमारे भगवान के नाम के ऊपर रुचि नहीं हो रही है, मतलब हम बोले रोगी है, हम लोग वी आर डिसीज्ड, नॉट टू क्योर द डिसीज। और वो रोग कैसे नष्ट करना है? भगवान के भक्तों के संग में रहकर प्रामाणिकता से हमको प्रश्न करके हमारा ये रोग कैसे नष्ट किया जाए, इसके बारे में पूछना चाहिए। हाउ डू आई ट्रीट द डिसीज, सबसे पहले पता होना चाहिए कि मैं रोगी हूं। जब व्यक्ति रोगी है पता होता है तो भी जो डॉक्टर के पास जाता है ना वो पूछने के लिए मेरे पास क्या दवा करूं मैं, अगर आप मानते नहीं कि मैं रोगी हूं तो डॉक्टर की जरूरत ही क्या है ना। तो ऑल ऑफ अस हम लोग को सबको पता होना चाहिए कि हम सब लोग रोगी हैं, भव रोगी, माया के अधीन हो गए हम सब लोग, और भगवान हमें सहारा दे रहे हैं, उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं, दिशा दिखा रहे हैं। तो ये सब का लाभ लेना और हमारे जीवन में मनुष्यत्व और फिर भक्त बनना मनुष्य होने के बाद भी बहुत जरूरी है। और कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम।